आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय प्रकाश एवं छाया। ये कक्षा छठी के विषय विज्ञान का 16वां अध्याय है और क्योंकि ये अध्याय हमने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था, तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि इस अध्याय में हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों बात की थी इस अध्याय में कि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन कभी अगर हम गौर करें तो हमें ये समझ में आता है कि वो चीजें हमें केवल तब ही दिखाई देती हैं जब वो बहुत अच्छे से रोशनी में होती हैं। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि जब आप धूप में खड़े होते हैं, जब सूरज की रोशनी होती है, उस वक्त आप किसी चीज को देखते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से नजर आती है। लेकिन अगर वही चीज आप ऐसी जगह पर देखें जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा हो तो आपको वो चीज ठीक से नजर नहीं आती है। इसी तरीके से अगर हम तुलना करें कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा रोशनी में रखी हो तो वो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आती है, और अगर कोई चीज ऐसी जगह रखी हो जहाँ रोशनी थोड़ी कम हो, जैसे दिए की रोशनी हो या फिर लालटेन की रोशनी हो, तो उसमें हमें चीजें बहुत हल्की हल्की नजर आती हैं। जैसे अगर हम किसी किताब को पढ़ने की कोशिश करें मोमबत्ती की रोशनी में या फिर लालटेन की रोशनी में, तो हमें उतना अच्छे से पढ़ने में ठीक नहीं लगता क्योंकि अक्षर हमें क्लियरली नहीं नजर आते, साफ नजर नहीं आते। लेकिन अगर वही किताब हम धूप के नीचे बैठ करके पढ़ें, धूप की रोशनी में पढ़ें, तो हमें वो किताब के अक्षर बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये एक बात समझ में आई थी पिछली क्लास में कि चीजों का हमें दिखाई देना और प्रकाश, इन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिश्ता है। अगर कहीं पर बहुत अच्छा सा प्रकाश है, बहुत अच्छी रोशनी है, तभी हमें चीजें बहुत अच्छे से क्लियरली साफ नजर आती हैं, और कोई ऐसी जगह है जहाँ पर प्रकाश कम है तो उसी हिसाब से चीजें हमें कम नजर आती हैं, साफ नजर नहीं आती, थोड़ी हल्की नजर आती हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था कि होता क्या है, एक्चुअल में कैसे हमें चीजें नजर आती हैं प्रकाश की मौजूदगी में। जब भी कोई चीज रखी होती है प्रकाश की मौजूदगी में तो उससे उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें धूप की, तो धूप में सूर्य जो है वो एक प्रकाश का स्रोत है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा होता है और वही प्रकाश आसपास की वस्तुओं पर पड़ता है। उसके बाद जैसे ही वो प्रकाश आसपास की वस्तुओं पर पड़ता है तो उनसे टकरा करके, उन वस्तुओं से टकरा करके वो प्रकाश हमारी आंखों में आता है, इसी वजह से हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर हम अंधेरे की बात करें तो अंधेरे में तो कोई लाइट का सोर्स ही नहीं होता, प्रकाश का कोई स्रोत ही नहीं होता, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती जिससे प्रकाश पैदा हो रहा हो। इसी वजह से कोई प्रकाश ना होने की वजह से कोई भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराती नहीं है, और किसी वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों में भी नहीं पड़ती है, और इसीलिए हमें कोई वस्तु रात्रि में दिखाई नहीं देती या फिर अंधेरे में भी हमें दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से प्रकाश की मदद से हमें चीजें नजर आती हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी प्रकाश के स्रोत के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था ऐसी कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सूर्य होता है वो भी एक तरीके का प्रकाश का स्रोत होता है, साथ ही में आपके घर में जो बल्ब होती है जो बिजली से चलती है वो भी एक प्रकार की प्रकाश की स्रोत होती है। या फिर अगर हम बात करें दिए की या फिर लालटेन की, ये सभी की सभी जो चीजें होती हैं ये प्रकाश की स्रोत होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इनमें अंतर क्या क्या है, तो आप लोगों को पता है कि जो सूर्य होता है वो प्रकाश का स्रोत तो है, लेकिन वो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। वो एक ऐसा प्रकाश का स्रोत है जो प्रकृति ने बनाया है, इंसानों ने नहीं बनाया है। और लेकिन अगर हम बात करें बल्ब की या फिर दिए की या फिर मोमबत्ती की, तो ये सभी की सभी जो चीजें हैं ये ऐसी चीजें हैं जो इंसानों ने बनाई है, ये प्रकृति ने नहीं बनाई है। बल्ब को इंसानों ने बनाया है, एक वैज्ञानिक ने बनाया है। इसी तरीके से मोमबत्ती और दिए का आविष्कार भी इंसानों ने ही किया है। इसीलिए ये जो अलग अलग प्रकाश के स्रोत है जो इंसानों ने बनाए हैं, उन्हें हम प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत नहीं कहते, कृत्रिम प्रकाश के स्रोत कहते हैं, या फिर मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत भी कह सकते हैं। मानव निर्मित क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें इंसानों ने बनाया है। तो इसी तरीके से आप जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं उन्हें दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, या तो वो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत होंगे या तो वो कृत्रिम प्रकाश के स्रोत होंगे। प्राकृतिक वो होते हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं, प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास मौजूद है, और कृत्रिम वो होते हैं जो इंसानों ने बनाए हैं। तो यहाँ तक हमने बात की थी, और साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे कहा जाता है कि वो धरती पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। ऐसा क्यों कहा जाता है, मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर आप अपने कमरे में बैठे हो, वहां कोई बल्ब जल रहा हो, तो आपको पता है कि आपके कमरे में जो बल्ब जल रहा है उसकी रोशनी केवल एक कमरे तक ही सीमित है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके कमरे में बल्ब जल रही होगी तो उससे पूरे लोकैलिटी में, पूरे के पूरे मोहल्ले में सबको रोशनी मिलती रहेगी, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन अगर हम सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य की इकलौती रोशनी की वजह से पूरा का पूरा विश्व जो होता है, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो होता है, उसे रोशनी मिलती है और गर्माहट भी मिलती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी दीप पिंड के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी जो भी वस्तुएं हैं जो सूरज की तरह ही प्रकाश पैदा करती है, प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें हम दीप पिंड कहते हैं या फिर प्रकाश के स्रोत भी कहते हैं, इंग्लिश में स्टार्स कहते हैं। तो जितने भी वस्तु हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट की बात करें या फिर लालटेन की बात करें या फिर दीपक की बात करें या फिर CFL बल्ब की बात करें, ये सभी की सभी जो चीजें हैं ये प्रकाश पैदा करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। तो एक तरीके से ये भी दीप पिंड कहला सकती है सूर्य की भांति ही। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो सूर्य होता है वो प्राकृतिक होता है और बाकी जो चीजें हैं वो क्या है, वो कृत्रिम है, उन्हें इंसानों ने बनाया है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग रात्रि में चंद्रमा की रोशनी देख पाते हैं, चंद्रमा को चमकता हुआ देख पाते हैं, तो आपको ये लगता होगा कि चंद्रमा भी एक प्रकार का दीप पिंड है क्योंकि उससे रोशनी आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो चंद्रमा होता है उसकी खुद की रोशनी नहीं होती है। चंद्रमा आप लोगों को चमकता हुआ इसलिए नजर आता है क्योंकि उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है और सूर्य की रोशनी उस चंद्रमा को चमकीला दिखाती है, और इसी वजह से आप लोगों को रात्रि के वक्त जो चंद्रमा होता है वो चमकता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया था कि चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी नहीं होती, खुद वो रोशनी पैदा नहीं कर सकता, और इसी वजह से हम लोग चंद्रमा को एक प्रकाश का स्रोत नहीं कह सकते, ना ही हम उसे दीप पिंड कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बात भी मैंने समझाई थी, और मैंने आप लोगों को ये तो समझा ही दिया था कि प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कौन से होते हैं और कृत्रिम प्रकाश के स्रोत कौन से होते हैं, और इसी आधार पर मैंने आप लोगों को सारणी 16.1 भरने को कहा था जो कि पेज नंबर 132 पर है। मैंने आपको इसमें अलग अलग उदाहरणों में से बताया था कि कौन कौन से प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत है और कौन कौन से कृत्रिम प्रकाश के स्रोत है। जैसे कि यहाँ पर जो अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं, टॉर्च बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती, चंद्रमा और तारे, इनमें से आप बता सकते हैं कि जो सूर्य और तारे होते हैं ये प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत होते हैं, टॉर्च बल्ब मोमबत्ती ये जो है ये कृत्रिम प्रकाश के स्रोत है। साथ ही में अगर हम चंद्रमा के बारे में बात करें तो जो चंद्रमा होता है वो तो प्रकाश का स्रोत ही नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो चंद्रमा जो होता है वो एक तरीके से प्राकृतिक ही कहलाएगा क्योंकि उसे इंसानों ने नहीं बनाया है, तो आप चंद्रमा को भी प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत में ही डालेंगे। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद में हमने आगे बात की थी प्रकाश के कुछ गुण के बारे में। तो पहला गुण हमने पढ़ा था कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, मतलब कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इस बात को समझने के लिए हमने गतिविधि एक की थी जो कि पेज नंबर 132 पर है। इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने तीन आयताकार गत्ते लिए थे, रेक्टेंगल गत्ते लिए थे। आप यहाँ पर साइज देख सकते हैं कि तीनों का साइज सेम होना चाहिए, इनके तीनों के आकार और इनकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, कोई बड़ा या कोई छोटा आपको नहीं लेना था। उसके बाद आपको क्या करना था कि तीनों गत्तों के बिल्कुल बीचों बीच आपको छेद कर देना था, इतना छेद कर देना था कि आपको तीनों छेदों के आर पार दिखाई दे। इस तरीके से तीनों में बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मध्य में छेद करने के बाद आपको इन तीनों गत्तों को टेबल के ऊपर रख देना था, जिस तरीके से चित्र 16.1 पेज नंबर 132 में रखा गया है। तो यहाँ पर जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कैसे तीनों गत्तों को एक के पीछे एक रखा गया है, इसी तरीके से आपको गत्तों को एक के पीछे एक रखना था, और उसके बाद तीनों गत्तों के बिल्कुल पीछे आपको एक मोमबत्ती जला करके रख देनी थी और गत्तों के तीनों गत्तों के बिल्कुल आगे आपको खड़ा होना था और छेद के जरिए देखने की कोशिश करनी थी मोमबत्ती के प्रकाश को। उसके बाद अगर आप छेद के जरिए मोमबत्ती के प्रकाश को देखेंगे तो आपको मोमबत्ती का प्रकाश दिखाई दे गया था। क्यों दिखाई दे गया था? इसलिए दिखाई दे गया था क्योंकि आपने गत्ते एक के पीछे एक रखे थे और तीनों गत्तों में बिल्कुल सेम जगह पर ही छेद था जिसके जरिए आपको दिखाई दे रहा था। तो एक तरीके से जो छेद उन गत्तों में था, उन गत्तों के छेद के जरिए ही आपको प्रकाश दिखाई दे रहा था और यहाँ पर आप ये देख पा रहे थे कि आपने गत्तों के छेद बिल्कुल एक के पीछे एक सीधी रेखा में रखे हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, इसीलिए गत्तों के छेद को एक के पीछे एक सीधी रेखा में रखने की वजह से आपको प्रकाश नजर आ रहा था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपको इस बार अगली बार क्या करना था कि जो आपने तीन गत्ते रखे हैं उनमें से बीच वाले गत्ते को आपको लेफ्ट या राइट, दाएं या बाएं खिसका देना था। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इस बार तीनों छेद एक के पीछे एक सीधी रेखा में नहीं होंगे। इसकी वजह से जब आप पहले गत्ते से पहले की भांति देखने की कोशिश करेंगे मोमबत्ती के प्रकाश को, तो इस बार आपको प्रकाश नजर नहीं आया होगा। क्यों नजर नहीं आया होगा? क्योंकि आपने बीच वाले गत्ते को टेढ़ा मेढ़ा खिसका दिया था, दाएं या बाएं खिसका दिया था, जिसकी वजह से इस बार जो तीनों गत्तों के छेद हैं वो एक के पीछे एक नहीं थे और यहाँ पर एक के पीछे एक ना होने की वजह से वो सीधी रेखा में नहीं थे। इसीलिए एक छेद से देखने के बाद आपको सीधा सीधा मोमबत्ती का प्रकाश नजर नहीं आया था। तो इससे भी आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप लोगों ने बीच वाले गत्ते को इधर या उधर खिसकाया, दाएं या बाएं खिसकाया, तो इससे जो छेद थे गत्तों के वो अब सीधी रेखा में नहीं थे, लेकिन प्रकाश जो है वो तो सीधी रेखा में ही गमन करता है। तो इसी वजह से आप लोगों को प्रकाश नजर नहीं आया जब आपने गत्तों के छेद को सीधी रेखा से अलग करके कुछ और आकार दे दिया। तो इस आधार पर आपको ये समझ में आ गया था कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। उसके बाद हमने गतिविधि दो भी की थी, ये भी हमने इसलिए की थी ताकि हमें समझ में आए कि सीधी रेखा में गमन करने का क्या मतलब होता है। इसमें आपने एक पाइप का सीधा टुकड़ा लिया था और उसकी मदद से मेज पे, मतलब कि टेबल के ऊपर एक मोमबत्ती जला करके रखना था आपको और आपको उस पाइप के जरिए जलती हुई मोमबत्ती को देखना था। तो यहाँ पर आपने सीधी लंबी पाइप ली थी, तो इसीलिए आप लोग जब उस पाइप से देख रहे थे तो आपको मोमबत्ती का प्रकाश बहुत आसानी से नजर आ गया। उसके बाद दूसरी स्थिति में मैंने आपको कहा था कि अब आपको पाइप को टेढ़ा कर देना था। तो जैसे आप लोग पाइप को टेढ़ा कर दिए होंगे तो इस बार आप लोगों को मोमबत्ती का प्रकाश नजर नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और पाइप को टेढ़ा करते ही आप लोगों को प्रकाश मोमबत्ती का दिखना बंद हो गया होगा। तो यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं, चित्र 16.1 पेज नंबर 133 पर दिखाया गया है कि पाइप को सीधा रखने पर हमें प्रकाश नजर आया था, मोमबत्ती का टेढ़ा कर देने के बाद हमें प्रकाश नजर आना बंद हो गया था। तो इसका कारण यही है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और इसी वजह से वस्तु को टेढ़ा करने के बाद हम लोगों को दिखाई देना बंद हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने तीन प्रकार के वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, जैसे कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। और यहाँ पर आप लोगों ने गतिविधि तीन की थी जिसके आधार पर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया था कि इन वस्तुओं को किस आधार पे बांटते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ अलग अलग वस्तुएं एकत्रित करनी है गतिविधि तीन के अंतर्गत, जैसे कि कांच का गिलास, पुस्तक, गत्ता, थाली, चश्मा, और ये सभी चीजें आप लोगों को इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना था, आपको बारी बारी से इनके जरिए देखने की कोशिश करनी थी। इनको अपनी आंख के पास लगा करके आपको बल्ब की रोशनी देखने की कोशिश करनी थी। तो आपने ये नोटिस किया था कि इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी थी जिनको अपनी आंख के पास लगाने के बाद जब आप बल्ब को देख रहे थे तो आपको बहुत क्लियरली नजर आया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनको अपनी आंख के पास लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। तो इसी आधार पर ऐसी जो वस्तुएं होती हैं जिनको अपनी आंख के पास लगाने पर आपको चीजें क्लियर नजर आती हैं, बिल्कुल साफ साफ नजर आती हैं, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। और ये जो वस्तुएं होती हैं इनको अपनी आंख के पास लगाने पर आपको चीजें क्लियरली इसलिए नजर आती हैं क्योंकि इन वस्तुओं के आर पार प्रकाश बहुत अच्छे से गुजर सकता है, प्रकाश को इनके आर पार गुजरने में दिक्कत नहीं आती, पूरा आराम से गुजर सकता है। और इसी वजह से आप लोगों को चीजें क्लियर नजर आती हैं इन वस्तुओं से देखने के बाद। तो इसके उदाहरण के बारे में हमने बात की थी कि वायु, साफ जल और कुछ प्लास्टिक की चीजें। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, इनके जरिए जब आप देखते हैं तो इनके जरिए आपको बिल्कुल आर पार एकदम क्लियर नजर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अलग अलग उदाहरण हैं, ये पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में पढ़ा था। तो आप लोगों ने जब गतिविधि 3 की थी तो आपने देखा था कि कुछ वस्तुएं जैसे कि किताब या फिर गत्ता ऐसी हैं जिनको जब हम अपनी आंख पर लगाते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कुछ भी दिखाई इसलिए नहीं देता कि ये जो वस्तुएं हैं अलग अलग, इनके जरिए इनके आर पार प्रकाश नहीं गुजर पाता, जिसकी वजह से दूसरी तरफ की चीज आपको दिखाई नहीं देती। कब दिखाई नहीं देती? जब आप किसी अपारदर्शी वस्तु को, ऐसी वस्तु को अपनी आंख पर लगा देते हैं जिसकी वजह से आपको दिखाई देना बंद हो जाए, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और इसके उदाहरण के बारे में भी हमने बात की थी, लकड़ी या फिर कोई धातु, जैसे कि जो प्लेट वगैरह होती है आपके घरों की, वो धातु की बनी होती है, तो प्लेट को अपनी आंख के ऊपर लगाने के बाद आपको चीजें दिखना बंद हो जाएंगी। तो जो धातु की चीजें होती हैं वो भी अपारदर्शी वस्तु होती है। गत्ता, लकड़ी, पत्थर, ये सभी की सभी जो चीजें हैं ये अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण के अंदर समझी जा सकती हैं। उसके बाद हमने पारभासी वस्तुओं के बारे में समझा था गतिविधि 4 के माध्यम से। पेज नंबर 133 पर है ये गतिविधि। इसमें आपने क्या किया था, आपने एक कागज की शीट ली थी, उसके बाद कागज की पतली शीट के जरिए आपने बल्ब को देखने की कोशिश की थी। आपने ये नोटिस किया था कि ऐसा नहीं था कि आपको बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा हो, बिल्कुल साफ नजर आ रहा हो, आपको थोड़ा थोड़ा सा रोशनी नजर आ रही थी। तो इस आधार पर आपको ये समझ में आया कि तीसरे प्रकार की वस्तुएं भी होती हैं जिनके जरिए जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा सा नजर आता है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपको इस व्हाइट शीट के ऊपर कुछ 2-3 बूंदे तेल की डाल देनी थी, उस तेल की जो आपकी मम्मी खाने में इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद ऐसा पेपर जिसके ऊपर आपने तेल लगा दिया था हल्का हल्का, उसके जरिए जब आप देखने की कोशिश कर रहे थे तो अब आपको थोड़ा बेटर दिखने लगा था, थोड़ा सा बेहतर नजर आने लगा था। तो इस आधार पर अब आप कह सकते हैं कि उसकी विजिबिलिटी बढ़ गई थी, अब आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखने लगा था। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि कुछ अलग प्रकार की ऐसे वस्तुएं भी होती हैं जिनके जरिए जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ा हल्का हल्का नजर आता है, क्लियर नजर नहीं आता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि हमें बिल्कुल ही नजर ना आए। तो हम कह सकते हैं कि इन वस्तुओं के आर पार प्रकाश हल्का हल्का सा गुजर सकता है, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं इनके आर पार। और इनके हमने उदाहरण के बारे में बात की थी, जैसे कि घिसा हुआ कांच या फिर तेल लगा हुआ पेपर या फिर बटर पेपर, ये सभी के सभी जो वस्तुएं हैं ये पारभासी वस्तुओं के उदाहरण हैं जिनके आर पार हमें बहुत हल्का हल्का नजर आता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी बच्चों, अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग छाया के बारे में बात करेंगे, जो आप लोगों की परछाई होती है, शैडो होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि छाया बनती कैसे है, किस प्रकार से बनती है, किस कारण से छाया का निर्माण होता है। और इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक गतिविधि करेंगे, गतिविधि 5, और ये गतिविधि है पेज नंबर 134 पर। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने मित्र के साथ एक ऐसे जगह में जाना है जहाँ अंधेरा हो। तो बेहतर होगा अगर आप 3 मित्र मिलकर के ये गतिविधि करें। और आपको क्या करना है, आपको ऐसे कमरे में, ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर पूरा अंधेरा हो, और उसके बाद आपको उस कमरे को एक मोमबत्ती की सहायता से प्रकाशित कर देना है। उसके बाद आप लोगों को, तीनों जनों को क्या करना है, आपको हाथ से अलग अलग आकार बनाने हैं। और दीवार के जरा सा पास जब आप बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जब आप हाथ के अलग अलग आकार बना रहे हैं दीवार के पास, तो दीवार के ऊपर छाया बन रही है, आपके हाथ के आकार की परछाई बन रही है, जो कि दिख रही होगी पेज नंबर 134 पर जो चित्र है 16.2। इसमें 2 अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं कि छाया कैसे बन रही है जब हाथ के अलग अलग आकार बनाए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप भी आकार बनाएंगे अपने हाथों से अलग अलग, तो आपको भी अलग अलग कुछ छाया के पिक्चर्स नजर आएंगी। तो यहाँ पर आपको इस गतिविधि के आधार पर समझना है कि छाया बनती कैसे है। तो आपने यहाँ पर जब मोमबत्ती को जला करके अपने हाथों से अलग अलग आकार बनाए तो आपको दीवार के ऊपर अलग अलग छाया नजर आ रही थी। अब आपको क्या करना है, अब आपको मोमबत्ती को बुझा देना है। अब आप कोशिश करिए अपने हाथ के अलग अलग आकार बना के छाया देखने की। इस बार आप लोगों को कोई भी छाया नजर नहीं आएगी। तो इस बात से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर हमें छाया बनानी है किसी वस्तु की, तो जरूरी है कि वहां पर प्रकाश का कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। अगर प्रकाश का स्रोत नहीं होगा तो आप छाया नहीं बना सकते हैं, किसी वस्तु की परछाई नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि किसी वस्तु की छाया बने इसके लिए आवश्यक है कि वहां पर कोई ना कोई प्रकाश का स्रोत होना चाहिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस बार आपको मोमबत्ती फिर से जलानी है और इस बार आपको मोमबत्ती को जलाने के बाद हाथ से छाया नहीं बनाने की कोशिश करनी है। इस बार जैसे ही आप मोमबत्ती जला देंगे तो उसके आगे आपको एक कांच की प्लेट रख देनी है, एक कांच की पारदर्शी प्लेट रख देनी है जिसके आर पर आपको पूरा क्लियर नजर आ रहा हो। ऐसी प्लेट को जब आप मोमबत्ती के पास रख देंगे उसके बाद आपको कोशिश करनी है उस पारदर्शी प्लेट से छाया बनवाने की। आप उससे छाया नहीं बनवा पाएंगे क्योंकि वो प्लेट तो पारदर्शी है, उसके आर पार तो रोशनी बिल्कुल क्लियरली पहुंच जाती है तो उससे छाया नहीं बनती। तो यहाँ पर दूसरी बात आपको समझ में आ रही है कि आपका हाथ जो है वो एक पारदर्शी वस्तु नहीं है, उसके आर पार रोशनी नहीं पहुंच सकती। और ऐसे वस्तु को जब हम रखते हैं किसी प्रकाश के स्रोत के पास केवल तब ही छाया बनती है। लेकिन अगर हम किसी पारदर्शी वस्तु को रख दें किसी प्रकाश के स्रोत के पास तो वहां पर उसकी छाया नहीं बनती है। तो यहाँ पर दो चीजें हमें समझ में आ गई छाया बनने के लिए जरूरी होती है, पहला प्रकाश का स्रोत और दूसरा एक अपारदर्शी वस्तु, ऐसी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकती है। उसके बाद अब हम समझेंगे कि क्या छाया बनाने के लिए प्रकाश के किसी स्रोत के साथ हमें एक अपारदर्शी वस्तु तो चाहिए होती है, क्या इसके अलावा भी कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र 16.3 पेज नंबर 134 पर, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों में से एक बच्चे ने एक बड़ा सा गत्ता पकड़ा हुआ है और ये लोग ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पूरा अंधेरा है। उसके बाद एक बच्चे ने हाथ में टॉर्च पकड़ा हुआ है और तीसरा बच्चा अपने हाथ से अलग अलग आकार बना रहा है। कहाँ पर आकार बना रहा है ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो बच्चा बिल्कुल गत्ते के सामने खड़ा हो करके आकार बना रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर वहां पर गत्ता नहीं होता तो क्या आप लोगों को छाया नजर आती, क्या ऐसा है कि आपको छाया कहीं भी नजर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी छाया बनती है तो या तो वो किसी सामने आगे पीछे दीवार पर बनती है या जमीन के फर्श पर बनती है। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि छाया को बनने के लिए एक पर्दा चाहिए होता है, एक प्लेन सरफेस चाहिए होता है, कोई ऐसी दीवार या फिर सीधी जमीन चाहिए होती है जिसके ऊपर ही हमारी छाया बनती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो गत्ता है वो एक पर्दे का काम कर रहा है, वो एक ऐसी जगह का काम कर रहा है जो प्लेन है और उसके ऊपर आराम से छाया बनाई जा सकती है। अगर वहां से गत्ता हटा दिया जाए तो हमें छाया नजर आना तुरंत ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गई कि तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं छाया को बनाने के लिए, एक प्रकाश का स्रोत, एक ऐसी वस्तु जो कि अपारदर्शी हो जिसके आर पर प्रकाश ना पहुंचे, और तीसरा हमें एक पर्दा भी चाहिए होता है, जैसे कि कोई दीवार या फिर फर्श या फिर गत्ता, इस तरीके से हमें ऐसी चीजें चाहिए होती है जिसके ऊपर छाया बन सकती है। तो यहाँ पर आप लोग जब पेज नंबर 135 पर आ जाएंगे तो एक नीले रंग का बॉक्स है जिसमें लिखा गया है कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे छाया कहते हैं या परछाई कहते हैं। छाया प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है, विपरीत दिशा में मतलब बिल्कुल सामने उसके बनती है ना, तो इसी को कहा जा रहा है कि प्रकाश के स्रोत के जो प्रकाश का स्रोत है बिल्कुल उसके सामने बनती है। यहाँ पर आप लोग चित्र भी देख सकते हैं पेज नंबर 134 पर चित्र 16.3, इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश का स्रोत पकड़ा गया है, प्रकाश का स्रोत इस चित्र में क्या है, टॉर्च है जो उस बच्चे ने पकड़ा हुआ है, वो प्रकाश के स्रोत का काम कर रहा है और वो छाया जो बन रही है वो बिल्कुल टॉर्च के सामने, उसके जो वस्तु रखी गई है अपारदर्शी वस्तु उसके पीछे बन रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो छाया बनती है वो हमेशा कहाँ बनती है, वो प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में सामने बनती है। अब हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे छाया और उसके बारे में कि छाया जो होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, छाया में और भी क्या क्या बातें होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम प्रच्छाया और उपछाया के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझने के लिए कि प्रच्छाया और उपछाया क्या होती है आपको एक गतिविधि करनी है, गतिविधि 6, ये है पेज नंबर 135 पर। इसमें आपको क्या करना है, आपको फिर से एक अंधेरे कमरे में जाना है और क्या करना है, आपको मेज पर खाली मेज पर आपको एक गत्ते का आयताकार टुकड़ा लेकर के रख देना है। आपको उसको सीधा खड़ा करके रखना है, लेटा करके नहीं रखना है। किसी चीज का आप सहारा ले सकते हैं, जैसे अपने ज्योमेट्री बॉक्स का या बुक्स वगैरह का आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से रखना है कि जो शेप है वो नहीं बिगड़नी चाहिए। जो आयताकार गत्ता आपने लिया हुआ है, गत्ते का टुकड़ा आपने लिया हुआ है, उसकी शेप नहीं खराब होनी चाहिए। आपको उसको सीधा खड़ा करके एक मेज के ऊपर रख देना है, ऐसे कमरे में ले जा करके जहाँ अंधेरा होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये भी नोटिस करना है, ये भी सुनिश्चित करना है कि जहाँ पर भी आपने वो गत्ता रखा हुआ है मेज के ऊपर, वहां बिल्कुल उसके ठीक पीछे एक दीवार होनी चाहिए, एक प्लेन सतह होनी चाहिए। जैसे कि दीवार ही जो होती है वही प्लेन सतह का काम करेगी। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, आप वहां पर एक टॉर्च को जलाएंगे, टॉर्च को प्रकाशित करेंगे, और आप उस प्रकाश जो है, टॉर्च का जो प्रकाश है, उसको आपको बिल्कुल गत्ते के ऊपर डालना है। तो जब आप गत्ते के ऊपर प्रकाश डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि उस गत्ते से उसके पीछे जो दीवार है वहां पर एक बड़ी सी छाया बन जाती है उस गत्ते की, और वो जो छाया बन रही है उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक भाग ऐसा है जो बिल्कुल गहरा काला है, और इसी को, गहरे काले भाग को हम क्या कहते हैं, प्रच्छाया कहते हैं। किसी भी वस्तु की जो छाया बन रही है उसमें जो गहरा काला भाग है, बिल्कुल गाढ़ा जो है, उसी को प्रच्छाया कहते हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रच्छाया यानी कि जो गहरी छाया है उसके आसपास एक हल्की सी आपको किनारा भी नजर आ रहा होगा, उसके चारों ओर एक हल्की सी छाया बनती हुई नजर आ रही होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम उपछाया कहते हैं। तो दो प्रकार की छाया होती है, एक ऐसी छाया जो उस वस्तु की बनती है, बिल्कुल गहरी काली छाया बनती है, और बीच में बनती है उसके किनारे किनारे एक ऐसी छाया बनती है जो थोड़ी हल्की हल्की सी होती है, और इसे उपछाया कहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने गत्ते से छाया बनवा करके देख लिया, अगली बार आपको एक बॉल से छाया बना के देखना है। फुटबॉल की गेंद ले सकते हैं या फिर क्रिकेट की गेंद भी ले सकते हैं। इस चित्र में जो पेज नंबर 135 पर है, चित्र 16.4 ब, इसमें एक बॉल ली गई है जो क्रिकेट की बॉल होती है उसको लिया गया है, और इसको एक ऐसे ग्लास के ऊपर रख दिया गया है, गिलास जो पानी पीने वाला होता है जो कांच का होना चाहिए, तो कांच के गिलास के ऊपर इस बॉल को रख दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे पहले अंधेरे कमरे में रखा गया था, और उसके पीछे एक दीवार होनी चाहिए। और अब आपने क्या किया, आपने टॉर्च ऑन किया और उस टॉर्च के प्रकाश को आपने उस बॉल के ऊपर डाला। तो यहाँ पर जब आप बॉल के ऊपर प्रकाश को डालेंगे, टॉर्च का प्रकाश जो होता है उसको जैसे ही आप बॉल के ऊपर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि दीवार के ऊपर एक छाया बन जाती है उस बॉल की, उस गेंद की, और वो जो बीच वाला भाग है जो गहरा काला है उसको हम क्या कहेंगे, उस बॉल की प्रच्छाया कहेंगे, और उसके किनारे किनारे आसपास जो हल्की सी छाया नजर आ रही है उसे उपछाया कहेंगे, उस बॉल की उपछाया। तो यहाँ पर दो प्रकार की जो छाया है, बीच वाली जो भाग होती है उसे प्रच्छाया कहते हैं, किनारे किनारे जो हल्का छाया होता है उसे उपछाया कहते हैं। छाया और प्रच्छाया और उपछाया के बारे में बात करने के बाद हम लोग ग्रहण के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में सुना होगा कभी कभी, तो इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर बात करनी है। आप लोगों को पता है कि जो सूर्य होता है वो स्थिर होता है, वो मूव नहीं करता है, घूमता फिरता नहीं है, लेकिन पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी और उसके साथ अन्य जो ग्रह होते हैं सभी के सभी सूर्य के आसपास हमारे अंतरिक्ष में इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, गोल गोल परिक्रमा करते हैं, और इसी तरीके से जो हमारी जो धरती होती है उसके चारों ओर चंद्रमा यानी कि चांद जो होता है वो धरती के चारों ओर परिक्रमा करता है, धरती के चारों ओर वो घूमता है, चांद घूमता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सूर्य स्थिर होता है, सूर्य रुका हुआ होता है, और सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी, और सारे जो ग्रह होते हैं वो घूमते हैं हमारे अंतरिक्ष में, और धरती के चारों ओर घूमता है चंद्रमा। और कई बार घूमते घूमते ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों एक के पीछे एक सीधे होते हैं, सीधी लाइन में होते हैं, तो इसी आधार पर कौन सा बीच में आ रहा है उस आधार पर हमें दूसरा जो होता है, जैसे अगर बीच में आता है धरती तो हम लोगों को चंद्र नहीं दिखाई देता। तो इसी तरीके से यहाँ पर समझेंगे हम लोग कि किस तरीके से तीनों जब सीध में आ जाते हैं, एक के पीछे एक आ जाते हैं, तो उसके वजह से एक जो बीच में आ जाता है उसकी वजह से हमें दूसरा जो है चंद्रमा या फिर सूर्य नहीं दिखाई देता, तो वो किस तरीके से होता है यहाँ पर ये समझेंगे। तो इस घटना को ही जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल सीध में आ जाते हैं, एक के पीछे एक आ जाते हैं, इसी घटना को हम लोग ग्रहण कहते हैं। और ग्रहण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और यहाँ पर बच्चों क्योंकि आज की क्लास का टाइम हो चुका है तो आप लोगों को मैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में डिटेल में अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। आपको आज की क्लास तक जो आज पढ़ाया गया है बस वही आपको पढ़ना है और उसको रिवाइज कर लेना है। और वहां पर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। और यहाँ पर हमने अभी लास्ट में जो पढ़ा है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्र जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं इस संयोगवश घटना को हम ग्रहण कहते हैं। और ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे कैसे होते हैं ये हम समझेंगे। तो मैं आज की क्लास को यहीं पर खत्म कर रही हूँ, अगली क्लास में बाकी की बातें होंगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।